मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 फरवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे एक अद्भुत शक्ति के रूप में बात करने जा रहा हूं, जिसे आप एक अदृश्य शक्ति कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अदृश्य शक्ति का हम सबको अनुभव है और जिंदगी में रोजाना कह लीजिए या कभी कभार कह लीजिए, इससे हमारी हमेशा मुलाकात होती रहती है। अभी मैंने कहा कि रोजाना कह लीजिए या कभी कभार कह लीजिए, तो यह बात आपको थोड़ी सुटपटांग सी लगी होगी कि रोजाना और कभी कभार में क्या कोई फर्क नहीं होता है। दोस्तों, बहुत फर्क होता है। लेकिन मैंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ इसलिए किया है कि जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जो बहुत सतर्क होते हैं, वो इसका अनुभव रोजाना कर सकते हैं। लेकिन जो इतने सतर्क नहीं होते और जितनी और या यूं कह लीजिए कि जिनकी संवेदना का स्तर इतना गहरा नहीं है, वो इसका अनुभव करते तो हैं। ऐसा नहीं है कि कभी अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभार वे इसका अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, वह शक्ति कौन सी है? कल कैंसर डे था, आपको मालूम है, और कैंसर डे पर बहुत से ऐसे लोगों के बयान आए हैं, उनके वक्तव्य आए हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का मुकाबला किया कैसे है। दोस्तों, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके नाम में ही आपको एक बहुत ही खतरनाक से दृश्य का अनुभव होता है। मतलब एक ऐसा कोई जंतु जिसके बहुत विषैले डंक हैं, बहुत नुकीले डंक हैं, और वो डंक चारों तरफ उसके शरीर में फैले हुए हैं, यानी कि उस विषैले जंतु के, और यदि वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो हमारे सेल्स को नष्ट कर देता है, यानी कि उसका विष फैलता चला जाता है। उसके जो डंकों की जो दर्द है, वो दर्द हमारी चेतना में प्रवेश कर जाता है और जिंदगी बचा पाना मुश्किल हो जाता है। और सच पूछिए तो आज भी, जबकि कैंसर के काफी कुछ इलाज हमें दिखाई देने लगे हैं, महसूस ऐसा ही होता है कि अगर हम सुन लेते हैं कि उसे कैंसर हो गया है, तो यही लगता है कि अब ईश्वर ही उसकी रक्षा कर सकता है। दोस्तों, सच बात यह है, ठीक है कि वो ईश्वर उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन यह ईश्वर है कौन? यही बस उस अदृश्य शक्ति के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। कल के अखबारों में आपने हमारे क्रिकेट प्लेयर जो युवराज सिंह हैं, उनका बयान पढ़ा होगा, या बयान नहीं भी पढ़ा होगा तो उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको जरूर पढ़ने को मिली होंगी। हमारे जो एक्टर हैं, बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि लाइव एक्टर, बहुत ही एक्सीलेंट एक्टर इरफान खान साहब, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिला होगा। इसी तरह से एक एक्टर हैं ऋषि कपूर, जो कुछ दिनों पहले ही कैंसर का इलाज बाहर से करा करके लौटे हैं। सोनाली बेंद्रे के बारे में भी आपको जरूर कुछ न कुछ कभी न कभी पढ़ने को मिला होगा। ये सब कौन लोग हैं? ये सब लोगों ने अगर कैंसर को मात दी है तो वो किस तरीके से मात दी है? और दोस्तों, चूंकि मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट का संबंध ज्यादातर युवाओं से होता है, केवल युवाओं तक नहीं, ज्यादातर युवाओं से होता है, तो मैं बताना चाहूंगा एक नाम, शायद आप लोगों को अभी अभी पढ़ने को मिला हो। उनका नाम है सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जो 2007 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, और अभी वो बकायदे उसी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में ही डीआईजी के पोस्ट पर हैं। डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये बिहार के रहने वाले हैं, और इन्हें भी कैंसर हुआ था। और कैंसर कुछ इस तरीके का हुआ कि आप सोच करके देखिए कि रेडिएशन के 35 दौर हुए, कीमोथेरेपी हुई, शरीर जरूरत से ज्यादा कमजोर हो गया, लेकिन उनके हौसले कभी भी कमजोर नहीं हुए, और यहां तक कि इतने दर्दनाक इलाज के दौर में भी वो बकायदे बटालियन में जाते रहते थे। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि इनकी जो पोस्टिंग होती थी वो आतंकवादी क्षेत्रों में होती थी, या जहां नक्सलवादियों की बहुत गंभीर गतिविधियां चल रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़, वहां इनकी पोस्टिंग होती थी और वहां भी इन्हें सफलता मिली है। अब आप सोच करके देखिए कि आफ्टर ऑल जो सुजीत कुमार हैं, या जो मैंने अभी और नाम लिए हैं, वो युवराज सिंह हों या इरफान खान हों, खान साहब हों, ऋषि कपूर हों, सोनाली बेंद्रे हों, ये लोग हैं क्या? क्या कुछ इनका मेड अलग है? ये कुछ मेड इन समथिंग डिफरेंट है, या वही इनका भी मेड है जो हम सबका मेड है? सोच करके देखिए और हमें इन सब पर विचार करना ही चाहिए। इनका मेड कोई अलग नहीं है, ये भी बिल्कुल हम लोगों की तरह ही हैं, आप जैसे हैं, दूसरे जैसे हैं, मैं जैसा हूं, हम सब एक ही जैसे हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है, वो कौन सी शक्ति है, या यूं कह लीजिए कि वह कौन सा गुण है जो इन लोगों को शेष लोगों से, हम जैसे लोगों से अलग कर देता है। तो वो जो शक्ति मिलती है, वो जो क्षमता हमारे अंदर पैदा होती है, वो क्षमता बेसिकली आती कहां से है दोस्तों? ये कहीं से नहीं आती, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये हम अपने अंदर पैदा करते हैं। देखिए, एक गाड़ी है आपके पास, आपने बहुत खूबसूरत गाड़ी ली है और बहुत महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, खड़ी है, लेकिन जब तक आप इंजन को चालू नहीं करेंगे तो वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अब आप कहेंगे भैया ये मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ली है और इम्पोर्टेड है और बेस्ट कंपनी की है और ये तो चली नहीं रही है। अरे भैया वो चलेगी, उसकी क्षमता बहुत बेहतर है, इसीलिए उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप इंजन को तो स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि कल आप लोगों ने U19 का जो क्रिकेट मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो सेमीफाइनल मैच हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो। मैंने वो मैच देखा, उसमें एक खिलाड़ी को आप जानते होंगे और शायद वो आपके जेहन में बस भी गया होगा, यशस्वी जायसवाल। अब आपको चाहिए, मुझे लगता है कि खासकर युवाओं को तो ऐसा चाहिए कि जो भी इस तरह के परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम जरा उसके बारे में जाने कि यार ये है कौन। वास्तव में यशस्वी जायसवाल की बैटिंग ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि नहीं, इनके बारे में जानना चाहिए। और जब मैंने जानने की कोशिश की और जो कुछ मुझे पता लगा तो मैं दंग रह गया। सोचिए कि उत्तर प्रदेश के गांव का एक लड़का, जिनके पिता की एक बहुत ही छोटी सी हार्डवेयर की दुकान है, क्रिकेट के प्रति रुचि रखता है, और कल्पना करके देखिए कि जब वो 10 साल का है तो वो मुंबई चला जाता है क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए, और फिर वो वहां जो जद्दोजहद से गुजरता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कहीं रहने के लिए जगह मिल जाती है, खर्चा चलाने के लिए वो कहीं काम कर लेता है, लेकिन वहां से भी वो हटा दिया जाता है, तो फिर एक दुकान में वो छोटा मोटा काम करने लगता है, लेकिन दुकान वाले को तो अपना काम चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट जब प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो काम नहीं कर पा रहे, तो दुकान वाला भी हटा देता है। अब क्या करें? तो क्रिकेट मैच के ग्राउंड में आप सोचिए, आप जहां ये ट्रेनिंग करने के जाते थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, वहां के ग्राउंड में एक टेंट लगा हुआ था। उस टेंट में ये जो खिलाड़ी है, जो लड़का है, छोटा सा लड़का है, अभी 18 साल का है, 3 साल तक वहां रहता है, टेंट वालों के साथ रहता है और वहां सीखता है। अब आप सोच करके देखिए कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे हम कहते हैं पैशन, वो जो अंदर की ताकत है, वह उसे अपने उद्देश्यों से विमुख नहीं कर पा रहा है, उसे जोड़े हुए है। जो भी हो मैं क्रिकेट को नहीं छोड़ूंगा, जो भी है मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि जब उसमें यह अदृश्य शक्ति शामिल हो जाती है तो उस काम को करने का आपका तरीका ऐसा हो जाता है, उस काम को करने की गहराई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसी काम के आप यशस्वी जायसवाल बन जाते हैं, उसी काम के आप सुजीत कुमार बन जाते हैं, युवराज सिंह और इरफान खान बन जाते हैं। ये जो अदृश्य शक्ति है, इनफैक्ट हम सब के अंदर उसी तरह से छिपी हुई होती है जैसे कि 2 पत्थर के टुकड़ों में आग छिपी हुई है, लेकिन आप उसे रगड़ेंगे तभी आग निकलेगी। माचिस की डिब्बी में जो अंदर तीलियां हैं उसमें आग की लपटें नहीं निकल रही हैं, लेकिन आग छिपी हुई है, आप उसे रगड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि कैसे आग की लपलपाती हुई खूबसूरत लाल लाल लपटें उसमें से खिलने लगेंगी। तो दोस्तों, हम सबको मुझे लगता है कि इस तथ्य को स्वीकार करके पहचानना चाहिए अपने अंदर जो शक्ति है, और उसे फिर बकायदे रगड़ के जरिए, संघर्ष के जरिए सामने लाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।